एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं अलेक्जेंडर सोल्जिनित्सिन, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी के रूस और दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
हाँ बिल्कुल, उन्हें अक्सर सोवियत गुलाग, मतलब वो जो श्रम शिविर थे, उनका इतिहासकार कहा जाता है।
सही, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, पर शायद सबसे बढ़कर वो उन लाखों लाखों बेआवाज लोगों की आवाज बने जिन्होंने वो भयानक दमन झेला था।
बिल्कुल, तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर उनके जीवन, उनके लेखन और उनकी जो स्थायी विरासत है उसे समझने की कोशिश रहेगी।
हाँ, और सोल्जिनित्सिन को समझना, जैसा आपने कहा, एक तरह से 20वीं सदी के रूस को समझना है। उनका जन्म ही हुआ 1918 में,
ठीक उसी उथल पुथल के बीच, रूसी क्रांति, फिर गृह युद्ध, माहौल ही वैसा था। और वो उस पीढ़ी के थे जिन्होंने स्टालिन का पूरा शासन देखा।
सोचिए जरा, उस वक्त का सांस्कृतिक माहौल कैसा रहा होगा।
वो समाजवादी यथार्थवाद का दौर था, मतलब कला का, साहित्य का एक ही मकसद था, कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करना, गुणगान करना।
और इसी माहौल में सोल्जिनित्सिन की कलम चली, जो सरकारी आशावाद और कह सकते हैं झूठे इतिहास के खिलाफ एक जबरदस्त नैतिक और कलात्मक आवाज बनकर उभरी।
यकीनन, और ये कोई आसान काम नहीं था, किसी तूफान से टकराने जैसा ही था।
हाँ वो तो है।
हाँ, थोड़ी नरमी आई थी ख्रुश्चेव के समय में,
हाँ।
जिसे पिघलाव या थॉ कहते हैं अंग्रेजी में। तब जाकर उनकी पहली और शायद सबसे जानी मानी किताब
इवान देनिसोविच का एक दिन,
हाँ वही, वो छप पाई। लेकिन जैसे ही ब्रेजनेव सत्ता में आए,
हाँ, फिर से माहौल बदल गया।
बिल्कुल, शिकंजा फिर कस गया। फिर तो उनका लिखना या तो वो सामिजदाद, मतलब हाथ से नकल करके गुप्त रूप से बंटता था,
अच्छा,
या फिर तामिजदाद यानी देश के बाहर छपता था। असल में वो जो महान रूसी लेखक थे ना, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, उनकी नैतिक परंपरा को ही वो आगे बढ़ा रहे थे।
और सोवियत सत्ता इसी परंपरा को खत्म करना चाहती थी।
बिल्कुल, जड़ से उखाड़ना चाहती थी।
उनके शुरुआती जीवन की बात करें अगर, तो किस्लोवोद्स्क में जन्म हुआ। पिता तो जन्म से पहले गुजर गए थे।
हाँ, उनकी माँ ताइसिया ने ही उन्हें रोस्टोव ऑन डॉन में अकेले पाला, और कहते हैं कि परिवार की जो पुरानी पृष्ठभूमि थी क्रांति से पहले की, उसकी वजह से उन पर हमेशा एक शक बना रहता था। माँ काफी धार्मिक थीं, और शायद उन्हीं से सोल्जिनित्सिन के मन में रूस के उस इतिहास की समझ आई जिसे दबाया जा रहा था। पर दिलचस्प बात यह है कि अपनी जवानी में वो खुद मार्क्सवाद लेनिनवाद से काफी प्रभावित थे।
अच्छा, ये तो नई बात पता चली। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई थी? सुना है गणित पढ़ा था उन्होंने, साहित्य में इतनी रुचि होने के बावजूद।
हाँ, ये भी उनके जीवन का एक पहलू है। उन्होंने रोस्टोव स्टेट यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिकी की डिग्री ली 1936 से 1941 तक।
अच्छा,
शायद उस वक्त वो ज्यादा व्यवहारिक लगा हो, लेकिन इसने उनकी सोच को एक विश्लेषणात्मक धार दी जो बाद में उनके लेखन में, खासकर गुलाग आर्काइपेलगो के जैसी किताबों में साफ दिखती है।
हाँ, वो बारीकी, वो जांच पड़ताल का अंदाज।
बिल्कुल, पर साहित्य का साथ नहीं छोड़ा। मॉस्को के एक संस्थान से पत्राचार के जरिए साहित्य पढ़ते रहे वो।
और फिर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, उसमें तो वो सेना में थे, एक सम्मानित तोपची अफसर, पदक भी मिले थे बहादुरी के लिए।
हाँ, काफी प्रतिष्ठित अफसर थे वो।
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध का नायक अचानक गुलाग का कैदी बन गया? ये कैसे हुआ?
यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। फरवरी 1945 की बात है, युद्ध लगभग खत्म ही होने वाला था। उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा। उस खत में उन्होंने स्टालिन की नीतियों की, मतलब दबी छुपी आलोचना कर दी थी। बस इसी बात पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया,
सिर्फ एक खत की वजह से।
हाँ, सोचिए, जिस व्यवस्था के लिए वो जान की बाजी लगा रहे थे उसी ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया।
और यहीं से वो यात्रा शुरू हुई जिसने उनके लेखन को वो असाधारण शक्ति दी, गुलाग के साल।
बिल्कुल, 8 साल, 1945 से 1993 पर। ये साल उन्होंने सोवियत जेल सिस्टम की अलग अलग भयानक जगहों पर बिताए। मॉस्को की वो बदनाम लुब्यंका जेल,
हाँ सुना है उसके बारे में,
कई लेबर कैंप और एक शराशका, ये खास जेलें थीं जहां पढ़े लिखे वैज्ञानिक कैदियों से सरकारी काम करवाते थे।
अच्छा, द फर्स्ट सर्कल इसी पर आधारित है।
हाँ बिल्कुल, और आखिर में कजाकिस्तान का एक ही बस्तूस कैंप। वहां के रोजमर्रा के अनुभवों ने ही इवान देनिसोविच का एक दिन को जन्म दिया। उन्होंने गुलाग को खाली नहीं कहा था, मानवीय पीड़ा का विश्वविद्यालय।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी।
1953 में स्टालिन की मौत हुई, उसी साल उन्हें कैंप से रिहाई मिली पर आजादी नहीं मिली।
मतलब
बाद में उनके उपन्यास कैंसर वार्ड को प्रेरित किया। उन्होंने छिप छिप कर लिखना भी शुरू कर दिया था, अपनी पांडुलिपियों को बड़ी मुश्किल से छुपाते थे।
और कैंसर से बच निकलना, ये तो एक चमत्कार जैसा था।
हाँ, वो खुद इसे एक चमत्कार या ईश्वरीय संकेत मानते थे। इससे उनका इरादा और पक्का हो गया कि उन्हें जिंदा रहना है और उन लाखों लोगों की कहानी दुनिया को बतानी है जिन्हें चुप करा दिया गया था।
और फिर कुछ साल बाद उनका पुनर्वास हुआ, वो रूस वापस आ पाए।
हाँ, 1957 में पुनर्वास हुआ, लेकिन असली पहचान मिली 1962 में, जब खुद निकिता क्रुश्चेव ने उनकी किताब वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान देनिसोविच को नोवी मीर पत्रिका में छापने की इजाजत दी। और वो एक धमाका था।
रातों रात मशहूर हो गए होंगे।
बिल्कुल, गुलाग की सच्चाई का चेहरा बन गए जिसे सब जानते थे पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। क्रुश्चेव के हटते ही
फिर से वही दमन।
हाँ, उन पर फिर से सरकारी गिद्ध दृष्टि पड़ने लगी, किताबें बैन हो गईं, केजीबी पीछे पड़ गई और 1969 में उन्हें सोवियत लेखक संघ से निकाल दिया गया।
और इसी मुश्किल वक्त के बीच उन्हें 1970 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
स्वीडिश अकेडमी ने उनकी नैतिक शक्ति की तारीफ की थी।
हाँ, कि वो रूसी साहित्य की महान परंपरा को निभा रहे हैं।
सोवियत सरकार के लिए तो ये एक जबरदस्त तमाचा था।
बिल्कुल, उन्होंने इसे शीत युद्ध का उकसावा माना होगा।
यकीनन, सोल्जनित्सिन पुरस्कार लेने स्टॉकहोम नहीं गए। उन्हें डर था कि अगर गए तो वापस नहीं आने दिया जाएगा।
अच्छा।
उनका जो नोबेल भाषण था, जो उनकी गैर मौजूदगी में पढ़ा गया, वो साहित्य की नैतिक जिम्मेदारी पर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। अब वो सिर्फ रूस के लेखक नहीं रहे थे,
वो एक वैश्विक प्रतीक बन गए थे दमन के खिलाफ आवाज उठाने वाले।
बिल्कुल।
और फिर 1973 में पश्चिम में द गुलाग आर्चिपेलागो छपी।
या
ये शायद आखिरी कील साबित हुई।
हाँ, कह सकते हैं। इस किताब के छपते ही सोवियत सरकार का सब्र वो टूट गया। फरवरी 1974 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ओहो।
उनकी नागरिकता छीन ली गई और उन्हें जबरदस्ती देश से निकालकर पश्चिम जर्मनी भेज दिया गया।
देश निकाला दे दिया गया।
हाँ, यहीं से उनके 18 साल लंबे निर्वासन का दौर शुरू हुआ। वो आखिरकार अमेरिका के वर्मोंट राज्य में बस गए।
वर्मोंट में क्यों?
एकांत के लिए शायद। वहां रहते हुए उन्होंने लिखना जारी रखा, खासकर अपने उस विशाल ऐतिहासिक उपन्यास द रेड व्हील पर काम करते रहे।
और दिलचस्प बात यह है कि वो पश्चिम में रहकर भी पश्चिम के आलोचक बने रहे।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 1978 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया उनका भाषण काफी चर्चित हुआ था। उसमें उन्होंने पश्चिमी समाज के भौतिकवाद और आध्यात्मिक खोखलेपन की तीखी आलोचना की थी।
चलिए, अब जरा उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण किताबों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान देनिसोविच से। 1962 में आई थी।
हाँ,
क्या खास था इसमें जिसने इतना बड़ा असर डाला? ये तो काफी छोटी किताब है।
शायद इसका छोटा होना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कोई महाकाव्य नहीं था, बस एक आम कैदी के जीवन का सिर्फ एक दिन।
अच्छा।
लेकिन जिस शांत गरिमा से, बिना किसी मेलोड्रामा के, सोल्जनित्सिन ने उस दिन की छोटी छोटी जद्दोजहद, वो ठंड, भूख, अपमान, उसके बीच इंसानियत के बचे रहने की कहानी कही, उसने सोवियत व्यवस्था के झूठ का पर्दाफाश कर दिया।
कोई चीख पुकार नहीं, बस सच्चाई।
हाँ, एक ठंडी तथ्यात्मक सच्चाई जिसे झुटलाना नामुमकिन था। यही उनकी साक्ष्य यथार्थवाद की शक्ति थी।
फिर आई द फर्स्ट सर्कल और कैंसर वार्ड, दोनों 1968 में। ये भी उनके अपने अनुभव पर आधारित थी।
हाँ, द फर्स्ट सर्कल उनके शराशका वाले अनुभव पर। ये एक ज्यादा बड़ा कैनवस है। इसमें कैदी हैं, गार्ड हैं, अफसर हैं, यहाँ तक कि स्टालिन भी एक किरदार है।
ओह।
ये दिखाती है कि कैसे एक दमनकारी व्यवस्था में ज्ञान और विवेक भी कैद हो जाते हैं और कैसे लोग मुश्किल नैतिक चुनाव करते हैं। शीर्षक भी बड़ा सांकेतिक है, दांते के इन्फर्नो के पहले घेरे जैसा, जहां सदा थोड़ी कम थी पर था तो वो भी नरक ही। और कैंसर वार्ड
उनके कैंसर से जूझने का अनुभव है। अस्पताल यहां पूरे सोवियत समाज का एक छोटा रूप बन जाता है, जहां अलग अलग तरह के लोग हैं, अपनी शारीरिक और आत्मिक बीमारियों से लड़ रहे हैं। ये मौत पर, पीड़ा पर और शायद मुक्ति की तलाश पर एक गहरा चिंतन है।
और फिर वो महाग्रंथ द गुलाग आर्किपेलागो, 1973 से 78 के बीच आए इसके खंड, इसे अक्सर उनकी सबसे बड़ी देन माना जाता है।
और सही भी है, उन्होंने खुद इसे साहित्यिक जांच का प्रयोग कहा था। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक स्मारक है, एक अभियोग है।
तीन खंडों में, हाँ, इसमें उन्होंने अपने अनुभव, 227 दूसरे पीड़ितों की गवाहियां, सरकारी दस्तावेज और गहरी ऐतिहासिक शोध सबको मिलाकर गुलाग सिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, लेनिन के समय से लेकर स्टालिन के राज तक।
इसमें आंकड़े भी हैं और कहानियां भी।
हाँ, आंकड़े भी हैं और दिल दहला देने वाली व्यक्तिगत कहानियां भी। इसने पहली बार दुनिया को गुलाग के असली मास्टाब, मतलब उसके पैमाने और वहशत का एहसास कराया। पश्चिम में इसके छपने के बाद सोवियत संघ को लेकर लोगों की सोच वो हमेशा के लिए बदल गई।
ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये साहित्य की ताकत का सबूत था।
बिल्कुल, कि कैसे साहित्य दबे हुए सच को सामने ला सकता है।
एक और बहुत महत्वाकांक्षी काम था उनका, द रेड व्हील, जो 1971 से 1991 तक आता रहा।
हाँ, ये उनका सबसे बड़ा सपना था शायद। रूसी क्रांति की जड़ों तक पहुंचना चाहते थे वो। ये कई हजार पन्नों का एक ऐतिहासिक उपन्यास चक्र है।
हजार पन्नों?
हाँ, इसमें पारंपरिक कहानी कहने के साथ साथ दस्तावेज हैं, अखबारों की कतरने हैं, अलग अलग किरदारों के नजरिए हैं। ये उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना गुलागार के पिलागो।
क्यों? शायद बहुत जटिल था।
हाँ, शायद इसकी जटिलता की वजह से। लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है कि सोल्जनित्सिन रूस की उस त्रासदी के कितने गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारणों को खंगालना चाहते थे।
अगर हम इन सभी रचनाओं को देखें तो कौन से मुख्य विचार या थीम हैं जो बार बार उभर कर आते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो पीड़ा और उसके बीच नैतिक रूप से टिके रहने का सवाल। सोल्जनित्सिन दिखाते हैं कि कैसे कैसे बेहद मुश्किल हालात इंसान के असली चरित्र को सामने लाते हैं। फिर व्यक्ति की अंतरात्मा और राष्ट्र की जो ताकत है उसके बीच का टकराव। वो हमेशा भौतिक मूल्यों पर आध्यात्मिक मूल्यों को तरजीह देते हैं।
और शायद सबसे गिनरीय विषय, सत्य बनाम झूठ का संघर्ष। पहली या स्टाइल में क्या खास बात थी जिसने उन्हें इतना प्रभावी बनाया?
जैसा हमने कहा, एक तो उनका साक्ष्य यथार्थवाद, मतलब तथ्यों और गवाही को साहित्यिक रूप देना। उन्होंने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन नहीं माना,
बल्कि
सच कहने का माध्यम माना।
हाँ।
सच कहने और राष्ट्र की याददाश्त को सहेजने का जिम्मेदार माध्यम, खासकर तब जब सरकार इतिहास को मिटाने पर तुली थी। गुलाग आर्किपेलागो के साथ तो उन्होंने साहित्यिक जांच की एक नई विधा ही बना दी।
और उनकी कहानियों में कई आवाजें होती हैं।
हाँ, अक्सर कई आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, अलग अलग किरदारों के नजरिए से, जिसे बहुस्वरता या पॉलीफिनी कहते हैं, कुछ कुछ दोस्तोयेव्स्की की तरह।
भाषा के स्तर पर भी उनका काम महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने उस सोवियत दौर की सूखी बेजान भाषा को चुनौती दी थी।
बिल्कुल, ये बहुत अहम है। सोवियत दौर में एक खास तरह की सरकारी भाषा बन गई थी, नोवो याज कह लीजिए उसे, न्यू स्पीक जैसा कुछ, बड़ी नीरस, नौकरशाही, भावनाओं से खाली,
जिसका मकसद शायद सोच को भी सीमित करना था।
हाँ, शायद सोल्जनित्सिन ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी रचनाओं में क्रांति से पहले की रूसी भाषा, लोक कहावतें, दोलियां, रूढ़िवादी ईसाई धर्म से जुड़े शब्द, इनका इस्तेमाल किया।
ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं थी।
नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध था। रूसी भाषा की आत्मा को उस व्यवस्था से वापस लेना जो उसे बेजान बना रही थी। उन्होंने लेखक की भूमिका को फिर से परिभाषित किया। लेखक सिर्फ कहानीकार नहीं है,
वो समाज का जमीर है, सत्ता पर सवाल उठाने वाला नैतिक पहरेदार।
बिल्कुल।
दुनिया भर में उनका असर कैसा रहा? जाहिर है सोवियत संघ की छवि बदलने में तो बहुत बड़ा हाथ था उनका।
जबरदस्त असर। इवान डेंसोविच और खासकर गुलाग आर्किपेलागो ने पश्चिमी दुनिया की आंखों पर पर्दा हटा दिया। बहुत से पश्चिमी बुद्धिजीवी जो सोवियत प्रयोग को लेकर थोड़े रोमानी ख्यालों में थे,
उनका मोह भंग हुआ।
हाँ, उन्होंने दुनिया भर में असंतुष्टों को, डिसिडेंट्स को हिम्मत दी, तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए नैतिक तर्क और शब्द दिए।
आज भी जब कहीं सत्ता सच को दबाने की कोशिश करती है,
सोल्जनित्सिन याद आते।
हाँ, और रूस के अंदर क्या उनकी विरासत सीधी साधी है या उस पर भी बहस होती है?
रूस में उनकी विरासत थोड़ी थोड़ी जटिल है। उनके साहित्यिक काम और नैतिक साहस की तो जबरदस्त इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाद के सालों में उनके कुछ विचार, जैसे उनका रूसी राष्ट्रवाद या पश्चिम की तीखी आलोचना, उसको लेकर बहस होती है।
अच्छा।
वो कोई साहित्यिक स्कूल बनाकर नहीं गए, पर वो एक नैतिक मील का पत्थर जरूर है, जब 1994 में वो निर्वासन से लौटे तो उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ था।
हाँ, वो तस्वीरें याद हैं।
अपने आखिरी साल उन्होंने मॉस्को में गुजारे, एक सम्मानित लेकिन कभी कभी विवादास्पद सार्वजनिक हस्ती के तौर पर। 2007 में मृत्यु से एक साल पहले उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया।
उनके कुछ मशहूर कथन हैं जो उनके विचारों की गहराई दिखाते हैं। एक तो वो अच्छाई बुराई वाली लाइन, वो बहुत मशहूर है।
हाँ, गुलाग आर्किपेलागो से, अच्छाई और बुराई को बांटने वाली रेखा देशों, वर्गों या पार्टियों के बीच से नहीं गुजरती, बल्कि हर इंसान के दिल के बीच से गुजरती है।
कितनी गहरी बात है।
हाँ, ये दिखाता है कि वो बुराई को किसी एक विचारधारा या समूह की बपौती नहीं मानते थे, बल्कि इसे इंसान के अंदर का एक सार्वभौमिक संघर्ष मानते थे।
और वो नारा, झूठ के सहारे मत जियो, लिव नॉट बाय लाइज,
ये उनके एक मशहूर निबंध का शीर्षक भी था। ये व्यक्ति की ईमानदारी को प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली हथियार बताता है।
उनका मानना था कि अगर लोग झूठ में जीना बंद कर दें तो तानाशाही टिक नहीं सकती। सीधी सी बात है।
हाँ,
उनके नोबल भाषण से भी एक विचारणीय बात है। हिंसा सिर्फ झूठ के सहारे छिप सकती है और झूठ सिर्फ हिंसा के सहारे बना रह सकता है।
कितना सटीक विश्लेषण है तानाशाही व्यवस्था का।
और गुलाग के अनुभव से निकली वो पंक्ति, वो तो छौंका देती है। शुक्रिया जेल मेरे जीवन में आने के लिए।
हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है, पर ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी भयानक पीड़ा को भी एक आध्यात्मिक कसौती माना जिसने उन्हें उनके जीवन का मकसद दिया।
और लेखकों के बारे में वो क्या कहते थे? द फर्स्ट सर्कल से एक लाइन है शायद।
हाँ, एक महान लेखक कहा जाए तो अपने देश में एक दूसरी सरकार होता है, और इसीलिए कोई भी हुकूमत महान लेखकों से पैर नहीं करती, सिर्फ छोटे लेखकों से करती है।
क्या बात है, ये दमनकारी समाज में लेखक की अनिवार्य विद्रोही भूमिका को उजागर करता है।
बिल्कुल।
कुछ और रोचक बातें उनके बारे में, जैसे उनकी गणित की पृष्ठभूमि का उनके लेखन पर क्या असर हुआ?
ये तथ्यों को बारीकी से जांचने और तर्कबद्ध तरीके से पेश करने में मदद की, जो गुलाग आर्किपेलागो जैसी रचनाओं में साफ दिखता है। और उनका जिंदा बच जाना भी, वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। पहले कैंसर से, फिर गुलाग की उन भयानक परिस्थितियों से, और जैसा हमने बात की, रूसी भाषा को जिंदा रखने की उनकी कोशिश, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी।
क्या उनकी किताबों पर फिल्में वगैरह बनी हैं? इतनी नाटकीय जिंदगी और इतना शक्तिशाली लेखन है उनका।
कुछ कोशिशें हुई हैं, पर सच कहूं तो उनकी किताबों का जादू, वो पर्दे पर उतारना बहुत मुश्किल है।
क्यों?
क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ कहानी में नहीं है, वो उनके विचारों की गहराई में है, नैतिक द्वंद्व में है, लेखक की अपनी आवाज में है। हाँ, 1970 में वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान देनिसोविच पर एक फिल्म बनी थी।
अच्छा।
और 2006 में रूस में द फर्स्ट सर्कल पर एक टीवी मिनी सीरीज बनी थी, जिसे काफी पसंद किया गया था। लेकिन असल रूपांतरण तो उनकी किताबें खुद ही हैं, शायद कोई फिल्म या नाटक उनके काम के पैमाने या असर की बराबरी नहीं कर सकता।
तो कुल मिलाकर सोल्जेनित्सिन की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि सच के लिए खड़ा एक अकेला इंसान भी वो पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ये व्यक्तिगत साहस और शब्दों की ताकत की एक मिसाल है।
बिल्कुल, उन्होंने दिखा दिया कि नैतिक बल वो भौतिक शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है।
तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां सूचना और दुष्प्रचार का इतना बोलबाला है, सोल्जेनित्सिन का ये आग्रह कि झूठ के सहारे मत जियो, ये हमारे अपने जीवन में क्या मायने रखता है? फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।